अमल की नीयत से जब कुरान को पढ़ना होता है तो एक स्ट्रेच में देख लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो इंसान को सोच पे माइल करती हैं अब वो बताना चाहूँगी। और ये सब कुछ कौमे सबा के बारे में बताने का मकसद क्या होगा कि हम हाल के आईने में माजी को देखें या माजी के आईने में हाल को देखें। असल में हमें कौमे सबा के साथ अल्लाह तआला की सुन्नत नज़र आ रही है, और चूंकि सूरत का नाम सबा है तो ये हो नहीं सकता कि हम इनके बारे में बहुत ज़्यादा बात ना करके आगे निकल जाएं। यकीनन अल्लाह तआला ने इसमें हमारे लिए कोई सबक रखा है। तो जैसे कि बात तफसीर के दौरान हो चुकी कि कौम सबा अपने वक्त की बहुत दौलतमंद कौम थी, अल्लाह तआला ने इनको इतना कुछ दिया, लेकिन इसकी वजह से ये ऐश और मस्तियों में आ गए। इनके बारे में चंद कोटेशंस आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी। ये लोग सोने और चांदी के बर्तन इस्तेमाल करते थे, इनके मकानों की छतें, दीवारें और दरवाज़ों में हाथी दांत, सोने, चांदी और जवाहर का काम बना होता था। ये सब हिस्टोरियंस हैं जिनकी बातें हैं जो ये यहाँ मैं आपके सामने रख रही हूँ। कहते हैं कि इनकी दौलत के अफसाने सुन सुनकर यूनान और रूम वालों के मुंह में पानी भर आता था। यूनान और रूम क्या था उस वक्त के? सुपर पावर्स थी, वो बड़ी ताकतें थी, तो वो भी इनकी दौलत को देखकर राल टपकाते थे। इसी तरह रूम और फारस की दौलत इनकी तरफ बही चली जा रही थी, यानी सुपर पावर्स को ये महसूस हो रहा था कि हमारी बहुत सारी दौलत किसी ना किसी वजह से इनके पास आती है, क्योंकि ये इस वक्त की सबसे ज़्यादा मालदार कौम थी। इनका सर सब्ज़ो शादाब मुल्क, बागात, खेतों और मवेशी से भरा हुआ था। अब देखिए कि नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं ना, ये बहुत अहम होते हैं किसी भी मुल्क के अंदर। जैसे मैंने आपको पीछे कहा कि अगर हमारा सारा मुल्क भी कोई खाली करके ले जाए, वी डोंट माइंड, बिकॉज हमें पता है कि हमारे पास अल्लाह ताला ने नेचुरल रिसोर्सेज दिए हमें। तो यही इनके साथ था। ये लोग ऐश में मस्त हो रहे और जलाने की लकड़ी की बजाय दारचीनी, संदल और दूसरी खुशबूदार लकड़ियाँ जलाते। इसी तरह से जब इनके इलाके के करीब के साहिल से तिजारती जहाज गुजरते तो वहां तक खुशबुओं की लपटें पहुंचती थी। पहली मरतबा सना, स्वाद से होता है ना, आपने सुना होगा सना का नाम, किसी को पता है कहाँ सुना था? कुरान में नहीं आया, तफसीर में आया, एंड पे आएगा, लेकिन बहुत मारूफ नाम है। चलिए, यमन के साथ ही सुना कभी जी, दो तीन जगह गुजर चुकी है। अब रहा यमन से था, सना के मुकाम से आया था, सूरत फील में हम पढ़ेंगे वही जगह ये, यानी आप देखें। मेरा तो दिल कर रहा था मैं आपको इनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ाऊं, और आप देखें कि कौमों के अरूज और जवाल हमारे लिए कैसे कायना बन के खड़े हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें वही शेयर करूंगी। कहते हैं कि पहली दफ़ा सना के बुलंद पहाड़ी मुकाम पर वो फलक शिकाफ इमारत तामीर की, जो कसरे गोमदान, पीछे मैंने आपको नाम नहीं लिखा है तब लिख लीजिए, गोमदान, यानी एक महल था गोमदान नाम का, जो कायम किया सबसे पहले दुनिया में इन्होंने बड़ी रकी, और सदियों तक ये मशहूर रही। अरब मोरहीन कहते हैं कि इसकी 20 मंजिलें थी और हर मंजिल 36 यानी 36 फीट बुलंद थी। तो आप सोच सकते हैं कि आज के दौर की, मैं हिसाब लगा रही थी कि आज 10 है तो 36 है, तो ये आज की 100 मंजिला बिल्डिंग के बराबर ऊंची बिल्डिंग थी। ये सब बस उसी वक्त तक रहा जब तक अल्लाह का फजल इनके शामिले हाल रहा। आखिरकार उन्होंने कुफराने नेमत की हद कर दी तो रब्बे कदीर की नजरे इनायत हमेशा के लिए इनसे फिर गई और इनका नामो निशान तक बाकी ना रहा। इनकी खुशहाली की जो तीन बुनियादी चीजें थी, यानी क्या इनका सोर्स ऑफ इनकम था, नंबर एक इनके पास मीशत थी, यानी कौम सबा के अरूज की बुनियादें क्या थी, नंबर एक ज़रात थी, दूसरी तिजारत थी। ज़रात को उन्होंने आबपाशी के बेहतरीन निज़ाम के ज़रिए से तरक्की दी थी। इन जैसा आबपाशी, यानी जो वाटरिंग का निज़ाम होता है, जो फसलों को पानी देते हैं, उस दौर में बाबुल के सिवा और कहीं ना था। इनकी सरजमीन में कुदरती दरिया नहीं थे, नोट कीजिएगा, हमारे मुल्क में तो है ना अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अरब में नहीं है, कुदरती नहीं थे। बारिश के ज़माने में पहाड़ों से बरसाती नाले बह निकलते थे, इन्हीं नालों पर सारे मुल्क में जगह जगह बंद बांध कर उन्होंने तालाब बना लिए थे, और इनसे नहरें निकाल निकाल कर पूरे मुल्क को इस तरह सैराब कर दिया था कि कुरान मजीद की ताबीर के मुताबिक हर तरफ एक बाग ही बाग नजर आता था। इस निज़ाम आपाशी का सबसे बड़ा पानी को स्टोर करने वाला वो तालाब था जो शहर मारब के करीब कोहे बल्ख के दरमियानी वादी पर बंद बांध कर तामीर किया गया था। लेकिन जब अल्लाह ताला की नजर इनायत इनसे फिर गई तो तो 5वीं सदी ईस्वी के वस्त में यह अजीम शान बंद टूट गया और इससे निकलने वाला सैलाब रास्ते में बंद पर बंद तोड़ता चला गया, यहाँ तक कि पूरे मुल्क का निज़ाम आपाशी तबाह हो गया और फिर इसे कोई बहाल ना कर सका। यानी नेमतें इंसान के लिए जहमत बन जाती हैं। मैं सोच रही थी कि एक बंद ही तो टूटा था तो पूरे मुल्क को क्या हो गया, तो अब आपने समझ लिया कि जब एक बंद टूटा तो उसके साथ सारे बंद थे। और ये जो लफ्ज़ है ना सैल अल अरिम, सैल तो आपको बता दिया, अरिम अवरानी जुबान का लफ्ज़ है और अरिम कहते हैं बंद को, यानी बंद डैम के मानों में कह लीजिए। तीसरी इनकी जो बहुत अहम चीज़ थी या कह लीजिए कि जो इनका सोर्स ऑफ इनकम था वो तिजारत थी। अल्लाह ताला ने इस कौम को जुग्राफियाई लिहाज से बेहतरीन मुकाम दिया था, जैसे आप कह सकते हैं ना आज के दौर में सेंट्रल लोकेशन थी। पीछे आप समझ चुके हैं कि एक तरफ एशिया है तो दूसरी तरफ यूरोप था, यानी जैसे आज के अरब मुल्कों की जो सिचुएशन है बिल्कुल वही इनकी लोकेशन थी। इससे इन्होंने खूब फ़ायदा उठाया। 1000 बरस से ज़ायद मुद्दत तक यही कौम मशरक़ और मगरब के दरमियान तिजारत का वास्ता बनी रही। एक तरफ इनकी बंदरगाहों में चीन का रेशम, इंडोनेशिया और मालाबार के गर्म मसाले, हिंदुस्तान के कपड़े और तलवारें, मशरकी अफ्रीका के जिंगी गुलाम, बंदर शुतुरमुर्ग के पर और हाथी दांत पहुंचते थे, और दूसरी तरफ ये इन चीज़ों को मिस्र और शाम की मंडियों में पहुंचाते थे जहाँ से रूम और यूनान तक ये माल रवाना किया जाता था। इसके अलावा वो खुद इनके इलाके में लोबान, ऊद, अंबर, मुश्क, उमर, करफा, कस्ब जरीरा, सलीखा और दूसरी इन खुशबूदार चीज़ों की बड़ी पैदावार थी जिन्हें मिस्र और शाम और रूम और यूनान के लोग हाथों हाथ लेते थे। देखिए अल्लाह कभी तेल दे के मुसलमानों को नवाज देता है, कभी इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज दे देता है, लेकिन कौमें जब इन चीज़ों को मिसयूज़ करती हैं तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ भी तो होती है, और अल्लाह का कानून बेलाग है, उसको किसी पे नहीं आता। फिर थोड़ा सा इनका जो सोशल सेटअप था उसको भी सुन लीजिए। 650 कबल मसीह का ये दौर था। जो इस दौर के बादशाह थे उनको मुकर्रिब कहते थे, कर्ब है ना काफ से, यानी मुकर्रिब कहते थे। और गुमान क्या है ये कि मुकर्रिब का ही हम मानी, मुकर्रिब कहते हैं क्लोजनेस। कैसे? अब क्योंकि अगली आयतों में हमने शिर्क की बहुत सारी बातें पढ़नी है तो ज़ाहिर ऐसे लगता है कि यहाँ शिर्क की बात क्यों आ गई कौम सबा के साथ, तो बड़ा बड़ा करके लिख लीजिए कि कौम सबा के जवाल की बहुत बड़ी वजह यह थी कि इनमें शिर्क आ गया था। क्या लोग इनके बारे में सोचते थे? लोगों का ख्याल था कि ये बादशाह इंसानों और खुदाओं के दरमियान अपने आप को वास्ता करार देते थे, या दूसरे लफ्जों में ये काहिन बादशाह थे। और इस ज़माने में इनका पाया तख्त जो था, यानी ये जो मुशहर था जिसको आप कैपिटल कह लें, सरदाह था, जिसके खंडर आज भी मारिब से मगरब की जानेब एक दिन की राह पर पाए जाते हैं और खरीबा के नाम से मशहूर हैं। इसी दौर में मारिब के मशहूर बंद की बुनियाद रखी गई, बाद में आने वाले बादशाहों ने इसको वसी से वसी करते रहा। उसके बाद थोड़ा सा दौर और गुजरा, 650 से लेकर समझे कि थोड़ा सा आगे और दौर आ गया, तो इस दौर में सबा के बादशाहों ने मुकर्रिब का लकब छोड़कर मलिक यानी बादशाह का लकब इख्तियार किया, जिसके मानी ये हैं कि हुकूमत में मजहबियत की जगह सियासत और सेकुलरिज्म का रंग गालिब होगा। देखिए आज के हालात नहीं है, वो कहते हैं ना कि जुदा हो सियासत दीन से तो रह जाती है चंगेजी, यही इनके साथ हुआ। इन्होंने कहा कि मजहब की बात ना करो और सियासत और सेकुलरिज्म का रंग गालिब आ गया। इस जमाने में मलूके सबा ने सरदाह को छोड़कर मारिब को अपना दारुल सल्तनत यानी कैपिटल बना लिया और इसे गैर मामूली तरक्की दी। ये मुकाम समंदर से 3900 यानी 3900 फीट की बुलंदी पर, यानी बहुत ऊंची जगह थी, और आपको पता है कि ऊंची जैसे पहाड़ी जगह जो होती हैं वो ज़्यादा खूबसूरत भी होती है और वहाँ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं। 3900 फीट की बुलंदी पर सना से 60 मील जानिब मशरक वाक़ है, और आज तक इनके खंडरात इस बात की गवाही देते हैं कि यह अपने दौर की एक बहुत बड़ी मुतमद्दिन कौम थी जिसका यह मरकज था। डिक्लाइन कैसे शुरू हुआ? 115 से 300 कबले मसीह तक का जो दौर था इसमें मुल्क सबा जो था उस पर हमीर नाम का एक कबीला गालिब हो गया, जो था तो कौम सबा का ही लेकिन तादाद में दूसरे कबाइल से बड़ा हुआ था। यानी आप कह सकते हैं आज की जुबान में अगर समझा दूं बात को हल्का रखते हुए, अपनों में ही फितने शुरू हो गए। यानी इनका जो डिक्लाइन था, और आप स्पेन का हालात पढ़ लीजिए, जो स्पेन टूटा छोटी छोटी चीज़ों में गया, मुसलमानों के हाथों से क्रिश्चियंस के हाथ में आ गया, उसमें भी आपस का इंतशार था, इनके आपस में फूट पड़ गई और इस तरह से छोटी छोटी जिसको आप कहना चाहिए कि टोलियों तो बन गए लेकिन ये एक चीज़ में ख़त्म हो गए। कोई सोच नहीं सकता कि वो कौम जहां कल तक क्या होता था, इस डंके बजते थे, आज वहां पे क्या होने लगा है। इसी तरह आप देखिए कि यहाँ हजरत दाऊद और सुलेमान के साथ इनका जिक्र क्यों आया है, इसको भी तारीख की नजर से सुन लीजिए। इसका वतन अरब का जनूबी कोना था, जो आज यमन में मशहूर है। इनके अरूज का दौर 1100 बरस कबले मसीह से शुरू होता है। हजरत दाऊद और सुलेमान के जमाने में एक दौलतमंद कौम की हैसियत से इसका शोहरा आफाक में फैल चुका, यानी ये मशहूर थे हजरत दाऊद के दौर में दौलतमंद कौम। यानी इनका दौर कौन सा, आप ये कह लीजिए हजरत सुलेमान और दाऊद का दौर है, और लोग इनको इस नाम से जानते थे। ये शुरू में सूरज को पूजती थी कौम, यानी आगाज कहाँ से हुआ इनके शिर्क का, सूरज को पूजते थे। फिर जब इसकी मलका हजरत सुलेमान के हाथ पर ईमान ले आई, याद है सूरत नमल, जब वो मलका मुसलमान हो गई तो गुमान किया जाता है कि उसकी गालिब अक्सरियत भी मुसलमान हो गई। लेकिन बाद में ना जाने किस वक्त इनके अंदर शिर्क और बुतपरस्ती का जोर हो गया, और जिन सितारों को या जिन खुदाओं को पूजते थे उनके नाम अलमका, चांद देवता, अस्तर, जोहरा, जाते हमीम और जाते बोदान, यानी सूरज देवी, और हुबस और हुरतम और हुरहमत और पता नहीं क्या क्या बुतों की पूजा शुरू हो गई। अलमका इस कौम का सबसे बड़ा देवता था, और इसके बादशाह अपने आप को इसी देवता के वकील की हैसियत से इतात का हकदार करार देते थे। नोट करें, सियासी शिर्क था इधर। हुक्मरानों को लोग ना सिर्फ ये कि हुक्मरान कहते थे, बल्कि उनको अपना खुदा भी कहते थे, यानी मनोमन उनकी बातें मानते थे। और यमन में बकसरत ऐसे कतबात मिले हैं जिससे पता चलता है कि सारा मुल्क इन देवताओं और खसूसन अलमका के मंदिरों से भरा हुआ था, और हर अहम वाक्य पर इनके शुक्रिया अदा किए जाते थे। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, कलीलुम मिन इबादिय शकूर, दी अल्लाह ने नेमते और शुक्रिया जाके अलमका के ये अदा कर रहे हैं। और यमन की तहकीकात में कहते हैं कि यमन से तकरीबन 3,000 कतबात मिले हैं, जिसमें से ये सारी इंफॉर्मेशन आपको सुनाई जा रही हैं। और अगर कहते हैं कि इनकी अरबी रिवायात, रोनानी और यूनानी तारीख की सारी रिवायतें जमा करें, तो इतनी मोटी किताब बन सकती है कि जिसको इंसान पढ़े तो इनकी ज़िंदगी के ऊपर गौर व फिक्र हो सकता है। आपको ये सारी बातें सुनते हुए कुछ नया लगा? कल भी यही था, आज भी यही है। असल बात है कि जब लोग दुनिया में आने का मकसद नहीं समझते और दूसरी तरफ चल पड़ते हैं, तो यही हालात उनके साथ भी होते हैं, जो कि होता है। इसी तरह कहते हैं कि ये एक माबूद जिसका नाम जी समवाई, जैसे समावाती वाल अर्द है ना, जमीनों आसमान का रब, यानी इनके एक बुत था। ममलकत सबा के मुतद्दिद मकामात पर ऐसी इबादत गाहें बनी हुई हैं जो जू समवी या जू समावी, यानी रब समा की इबादत के लिए मखसूस थी। बाज़ मकामात पर इस माबूद का नाम मलकन जू जी समा, यानी जू समावात, यानी बस आप ये कह लीजिए कि बादशाहों का जो आसमान का मालिक है, ये नाम था। और सदियों तक ऐसा रहा, और एक इमारत भी मिलती है जहाँ यही नाम लिखा हुआ है। फिर उसके बाद, यानी कहने का मतलब, जो आप जो बात बता रही है उसका मतलब यह है कि एक्चुअली इन द बिगिनिंग ये मुसलमान मुल्क था, ये कौम मुसलमान थी। अल्लाह का नाम मौजूद है, अल्लाह के नाम पर इबादत गाहें मौजूद हैं। 465 के कतबे में ये लफ्ज़ तक लिखे हुए हैं, मैं उर्दू में पढ़ के सुना देती हूँ, इस खुदा की मदद और ताईद से जो आसमानों ज़मीन का मालिक है। इसी तरह इनकी तारीख में खुदा के लिए रहमान का लफ्ज़ भी मौजूद है। असल अल्फाज हैं बिरदा और रहमानान, रहमान की मदद से। तो आप सोच सकते हैं कि ये बिगड़ी हुई मुसलमान कौम थी। ये असल खुलासा है बात का। जब अल्लाह ताला की इस दुनिया में लोग शिर्क करते हैं तो फिर उनको यहाँ रहने की इजाज़त नहीं दी जाती। हम अल्लाह ताला से ये बहुत दुआ करें कि अल्लाह ताला जो हशर इन कौमों का हुआ वो आज हम मुसलमानों के मुल्कों और छोटी छोटी स्टेट्स का ना हो, कि जहाँ पे तेरे सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं। और आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, वहाँ दुनिया के रिसोर्स भी जमा हो जाते हैं, फिर लोग भी वहाँ जाना चाहते हैं। वहाँ दुनिया की तरक्की और बड़ी बड़ी बिल्डिंग और इस तरह के हालात शुरू हो जाते हैं कि जिसके बाद वाकई लगता है के लोग आते हैं। एक आखिरी बात इनकी करके तो आगे चलती हूँ। ये जो बात थी ना कि इनके बारे में कहा गया कि इन्होंने कहा कि रब्बना बाइद बैना सफारी ना, हमारे सफरों में दूरी कर दे, थोड़ी सी वजह तो कर दी ना कि इनको ये चुपता था कि इतनी आबादी क्यों है, वाई सो क्राउडेड, यानी हमारा मुल्क इतना क्राउडेड क्या है। तो इस पर मुफसरी ने एक और नुकता पेश किया, और वो क्या, वो कहते हैं कि इसके बहुत सारे इम्कान है, जिसमें एक इम्कान ये भी है कि इनको अपनी कसरत आबादी बुरी लगी और इन्होंने फैमिली प्लानिंग करके आबादियों को कम करना चाहा। ये वजह आपको पीछे भी बताई थी। कम लोग हों और हम इतने लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे कि आपको तो माल्थीस का नज़रिया था आज से कई 50-60 साल पहले कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी अगर इन्हीं रिसोर्सेज पे रहे। और इसी तरह इन्होंने एडवेंचर के नाम पे ये सारे काम कर दिए और इन चीज़ों को लेकर चल पड़े। फिर आप देखिए एक और चीज़, यानी इसी से रेलिवेंट है वो भी, कोई अलग चीज़ नहीं है, और वो क्या है कि जब अल्लाह ताला किसी कौम को चुनता है तो फिर उस कौम से अल्लाह ताला मतलूब क्या करता है, अल्लाह ताला क्या चाहते हैं कि ये नेमतें मिलें और इन नेमतों को पाकर लोग दुनिया को फ़ायदा दें। इस कौम ने लोगों को फ़ायदा देने की बजाय अपने ही मुल्क में इमारतें और मंदिर और इस तरह की यादगारें कायम कर दी कि जिसकी वजह से बाहर की जो बड़ी सुपर पावर्स थी उसकी, वो लोग इधर बड़े शौक से आते थे इनको देखने के लिए, लेकिन बाद में फिर ख़त्म हो गई बात। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस बुरे अंजाम से बचाए। तो ये सबक का थोड़ा सा खुलासा था। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़त अम्मा यसिफून व सलाम अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।
لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ